यहाँ ब्राजील में पूरी दुनिया की आंखें एक गेंद पर मरकूज हैं। दूसरी तरफ यानी मशरिक वुस्ता के कल्ब में कुछ इस तरह के हादसात रोनुमा हो रहे हैं। दाइश कहें या दौलत इस्लामी शाम व इराक, जो शाम की फौज से शिकस्त और बशारुल असद के मुखालिफीन से शदीद इख्तलाफात के बाद फरार करने पर मजबूर हो गए, इस दफा अपनी वहशीगरी को इराक में शुरू कर दिया है। ये मुसल्लह दहशतगर्द गिरोह जिसने कुछ ही दिन पहले अबू बकर अल बगदादी को खलीफतुल मुस्लिमीन ऐलान किया है और पूरी उम्मत मुस्लिमा से बैत की डिमांड की है, इराक में अपनी इब्तदाही से वहशीगरी को अपनाया है। वो सबसे पहले अलंबार गए और फिर आसानी के साथ मुसल पर काबिज हो गए। एक ऐसा कब्जा जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिर्फ चंद गोलियों की गूंज से ही हासिल हो गया, जिसमें बासी गद्दार सद्दामियों का किरदार नुमाया है, जिनकी हिमायत सद्दाम की बेटी कर रही है। अलबत्ता दाइशियों ने कुछ माह पहले ही से कुछ 100 लोगों को इस शहर में दाखिल कर दिया था और काफी ज्यादा तादाद में इमलाक को किराए पर हासिल कर लिया था और साथ ही साथ इस शहर में काबिले तवज्जो नफूज हासिल कर चुके थे। दाश की बुनियादों को ढूंढने के लिए अलकायदा और अतौहीद को जानना होगा, एक ऐसा गिरोह जो अपने खुदकश हमलों की वजह से 2001 में कलअदम करार दिया गया। अबू बकर बगदादी अपने भाई के अमरीकियों के हाथों कत्ल के बाद इस गिरोह का रहबर बना, एक ऐसा शख्स जिसकी हलाकत या तलाश में मदद पर अमरीका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। बाज़ अमरीकी फौजियों के बयानात के मुताबिक अबू बकर बगदादी जब अबू गरैब जेल में था तो अमरीकियों से मुआहदा तय पाया कि वो अमरीकियों के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा, लिहाजा अमरीका की जानिब से इनाम वगैरह सब दिखावा है, क्योंकि विलियम हेगल माहिर जियोपॉलिटिकल तज़िया निगार शवाहिद की बिना पर कहता है कि दाइशियों को 2012 में अमरीकियों के जरिए उर्दन की फौजी छावनियों में तरबियत दी गई और यहीं पर इज्जत दौरी नामी शख्स की तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी है, जो 2003 में अमरीकी हमले के बावजूद सही और सालिम फरार होने में कामयाब रहा। इज्जत दौरी बास पार्टी की हाई कमांड का हिस्सा है, जो आजकल दाश के नामवर कमांडरों में से एक है। इज्जत दौरी का अमरीकियों के हाथों से भाग जाना बहुत से तज्जिया निगारों के लिए एक मौम्मा है, जो व्हाइट हाउस की दाश के बारे में सियासत पर सवालिया निशान है। जिमनन 1000 चचिन जंगजुओं की दाश में शमूलियत, जो सोवियत यूनियन के जमाने में अमरीका की तरफ से अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ लड़ रहे थे, या बायर लशबेली जैसे अशखास का दाश के कमांडर की हैसियत से सामने आना दाश और वाशिंगटन के रवाबित को वाज़ेह करता है। बावजूद ही के दाशियों ने अशैबानी के नाम से इसे सामने रखा है, लेकिन वो अरब नहीं है। हत्ता गार्डियन ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि दाशियों की यूनिफॉर्म भी अमेरिकन है। दाशी अपनी कार्रवाइयों में इंतहाई जदीद हथियार MI6 और MI2 इस्तेमाल करते हैं, जो सिवाय अमेरिकन आर्मी के किसी दूसरे के पास नहीं है।
يعاقب من الهيئة الشرعية ب25 جلدة أمام الناس
مجاهد أشداء حركة أحرار الشام الإسلامية تنفيذ حكم تارك صلاة في يوم الجمعة।
दाइशियों ने फुटबॉल और वर्ल्ड कप शुरू होते ही जंग वर्ल्ड कप के उन्वान से एक तस्वीर शाया की और आजकल अपनी हुकूमत के कवानीन को इराक के मकबूजा इलाकों पर लागू कर रहे हैं। मौसूल को दाइशी हुकूमत का दारुल खिलाफा करार दिया गया है। आजकल इंतहाई वहशियाना कवानीन की जद में हत्ता ऐसे कवानीन जो अलकायदा और तालिबान ने भी लागू नहीं किए थे, औरतों का मर्द डॉक्टरों से रुजू करना किसी भी सूरत में हराम, बालों को कंघी करना हराम, फुटबॉल देखना हराम, मोबाइल की रिंगटोन का म्यूजिक हराम, मर्दों का औरतों के लिबास का कारोबार करना हराम, ये सब माजी में करने वस्ता के कवानीन मालूम होते हैं, यहाँ तक कि जींस की पैंट पहनना हराम। इस दहशतगर्द गिरोह में अक्सरियत ऐसे मजदूरों की है जो डॉलरों की खातिर मौजूद हैं। सवाल ये है कि ये अनगिनत पैसा दाश के पास कहां से आया। सानियन ये कि मौसूल पर कब्जे से पहले भी दाश के पास $775 मिलियन मौजूद थे। लोगों का अगवा करना और तमान मांगना, दुनिया में मंशियात की स्मगलिंग, بن لادن کی باقیات یعنی داعش کے پیسہ جمع کرنے کے ذرائع ہیں۔ اسی بارے میں احمد شلبی عراقی پارلیمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ داعش نے شام کے تیل کے کنوؤں سے آج تک $50 ملین حاصل کیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ موصل پر قبضے کے بعد انہوں نے عراقی نیشنل بینک سے $450 ملین چوری کیے۔ یہ سب باعث بنا کہ داعش اس وقت کی سب سے دولت مند دہشت گرد تنظیم بن کر سامنے آئے۔ ایک اور خاص بات یہ کہ داعش حتی بن لادن کی نصیحتوں پر بھی عمل نہیں کرتی۔ بن لادن نے 2011 میں اپنے پیروکاروں کو حکم دیا تھا کہ کھلم کھلا قتل عام نہ کریں، عام افراد کو نہ ماریں، وحشی گری سے دور رہیں، علاقائی حکومتوں سے جنگ نہ کریں اور اپنے اتحادیوں سے بھی جنگ نہ کریں، اور یہی سب احکامات آج تک داعش کے ہاتھوں پامال ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان تمام قوانین کو نہ صرف توڑا بلکہ اپنے اتحادی النصرہ سے بھی جنگ کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران البغدادی کے شاگرد میڈیا پر کافی زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک طے شدہ پلان کے تحت بعض میڈیا گروپ کی طرف سے داعش کی بھرپور انداز میں سپورٹ کی جا رہی ہے، جس میں داعش کو ایک ناقابل شکست اور خوفناک انداز میں پیش کرنا شامل ہے۔ سروے اور تحقیقات کے مطابق بعض میڈیا گروپس داعش کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں جس سے انہیں مختلف علاقوں میں قبضہ کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو داعش کی حمایت کے الزام سے کس طرح مبرا کرتا ہے۔ کیا وہ اس کام کے لیے داعش کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے گا، یا صرف دکھاوے کے لیے اپنے ڈرون سے اور وہ بھی بے ہدف نشانوں پر اکتفا کرے گا؟